अध्याय 8 सूत्रकाल कल्प सूत्र। उपनिषदों के पश्चात ब्राह्मण साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग सूत्र रूप में लिखा गया। सूत्र छोटे छोटे वाक्य होते हैं, कम से कम शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक बात कह देना इस सूत्र साहित्य की विशेषता है। इसके अंतर्गत व्यवस्थाकारों ने समाज के समस्त धार्मिक एवं सामाजिक विधि निषेधों को छोटे छोटे सूत्रों में संगठित कर रखा है। लघु रूप में होने के कारण इन सूत्रों को याद रखना और संरक्षित रखना दोनों सरल हो गया था। सूत्र साहित्य में कल्प सूत्र का विशेष महत्व है। कल्पसूत्र तीन भागों में संगठित हैं। पहला श्रौत सूत्र, दूसरा गृह सूत्र और तीसरा धर्म सूत्र। पहला श्रौत सूत्रों का विषय यज्ञ है। इनमें प्राचीन काल से चली आने वाली यज्ञ क्रियाओं के आकार प्रकार विधि निषेध आदि का वर्णन है। इनका स्वरूप नितांत कर्म कांडी है। दूसरा गृह सूत्रों का प्रमुख विषय गृहस्थ जीवन है। इनमें मनुष्यों के आचार कर्तव्य उत्तरदायित्व दैनिक उपासना यज्ञ संस्कार आदि के संबंध में विविध नियम है। तीसरा धर्म सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र में बहुत कुछ विषय साम्य है। उनमें विशेष अंतर यही है कि जहाँ गृह सूत्र गृहस्थ जीवन में विधि निषेधों का सविस्तार वर्णन करते हैं, वहाँ धर्म सूत्र अत्यंत संक्षिप्त रूप में उनका उल्लेख करते हैं। परंतु गृह सूत्रों की अपेक्षा उपनयन, विवाह आदि संस्कार, ब्रह्मचर्याश्रम, श्राद्ध, मधुपर्क, अध्ययन, अनध्ययन आदि धर्म सूत्रों में अधिक विस्तार के साथ वर्णित है। सूत्र साहित्य और स्मृति साहित्य। कालांतर में सूत्र साहित्य की परंपरा को स्मृति साहित्य ने भी सक्रम रखा। सूत्रों की भांति ही स्मृतियों ने भी धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादन किया है, परंतु फिर भी दोनों प्रकार के साहित्य में अंतर है। सूत्र साहित्य का प्रारंभ स्मृति साहित्य के पूर्व हुआ। यद्यपि अनेक स्मृतियां अनेक सूत्रों से प्राचीन है, सूत्र साहित्य गद्य और पद्य दोनों में है, परंतु स्मृति साहित्य एकमात्र पद्य में है। समांतर की भाषा स्मृतियों की भाषा से अधिक प्राचीन एवं अविकसित है। कतिपय सूत्रकार गौतम। गौतम धर्म सूत्र काफी प्राचीन प्रतीत होता है। बौद्धायन धर्म सूत्र में गौतम का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इससे प्रकट होता है कि गौतम बौद्धायन से पूर्व हुए थे। कालांतर में वशिष्ठ धर्म सूत्र मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में भी गौतम का उल्लेख किया गया है। इससे गौतम की व्यवस्था की प्राचीनता और महत्ता दोनों सिद्ध होती है। गौतम धर्म सूत्र एकमात्र गद्य में लिखा गया है, अतः इस आधार पर यह गद्य पद्य मिश्रित सूत्र रचनाओं से अधिक प्राचीन लगता है। गौतम धर्म सूत्र पाणिनि के व्याकरण नियमों से परिचित है, परंतु उसमें उन नियमों उतनी मान्यता नहीं दिखाई देती जितनी बाद के सूत्र साहित्य में। इससे अनुमान किया जा सकता है कि गौतम अन्य सूत्रकारों की अपेक्षा पाणिनि के अधिक समीप थे। उस समय तक कदाचित पाणिनि की व्याकरण नियमावली अधिक प्रचलित न हुई थी। एक स्थान पर गौतम का कथन है कि वर्षा ऋतु में भिक्षुओं को परिभ्रमण स्थगित करके एक ही स्थान पर वास करना चाहिए, यह बौद्ध भिक्षुओं का नियम था। कदाचित गौतम ने इसे बौद्ध व्यवस्था से ही ग्रहण किया था। यही नहीं, गौतम परिवाचक के स्थान पर भिक्षु शब्द का प्रयोग करते हैं, यह विशेषतया बौद्ध प्रयोग था। इससे भी वे महात्मा बुद्ध के पश्चात परंतु उनके काफी निकट सिद्ध होते हैं। गौतम धर्म सूत्र में यवन जाति का भी उल्लेख है। इस सब आधारों पर गौतम का काल 600 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच में रखा जा सकता है। बौद्धायन, बौद्धायन का धर्म सूत्र भी मिलता है और गृह सूत्र भी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्धायन गृह सूत्र उनके धर्म सूत्र से अधिक प्राचीन है, क्योंकि बौद्धायन धर्म सूत्र में उनके गृह सूत्र का उल्लेख मिलता है। बौद्धायन धर्म सूत्र में गौतम का उल्लेख हुआ है, अतः स्पष्ट है कि बौद्धायन गौतम के बाद हुए, परंतु व्याकरण शैली सिद्धांत आदि को देखते हुए बौद्धायन अन्य सूत्रकारों से अधिक प्राचीन लगते हैं। समानतया इन्हें 500 ईसा पूर्व और 200 ईसा पूर्व के बीच में रखा जा सकता है। आपस्तंभ इनका संपूर्ण कल्प मिलता है। इसमें श्रौत सूत्र, गृह और धर्म सूत्र तीनों हैं। बौद्धायन की अपेक्षा आपस्तंभ धर्म सूत्र की भाषा अधिक सुव्यवस्थित है, अतः इसका रचना काल बौद्धायन के पश्चात ही होगा। याज्ञवल्क्य ने आपस्तंभ का उल्लेख किया है, अतः निश्चित रूप से आपस्तंभ 200 ईसा के पूर्व हुए होंगे। आपस्तंभ की भाषा में पाणिनि के नियमों की अधिक मान्यता नहीं है, इससे वे पाणिनि काल से बहुत दूर नहीं हटाए जा सकते। यद्यपि आपस्तंभ की रचनाओं में गौतम का नाम उल्लेख नहीं है, तथापि दोनों सूत्रकारों की व्यवस्था में बहुत कुछ साम्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपस्तंभ ने गौतम के कुछ समय बाद ही अपनी व्यवस्था बनाई थी। इन आधारों पर हम आपस्तंभ को 500 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व के बीच में रख सकते हैं। वशिष्ठ, अन्य प्राचीन सूत्रकारों में वशिष्ठ उल्लेखनीय है। इनका धर्म सूत्र भाषा, व्याकरण शैली और सिद्धांत की दृष्टि से अन्य धर्म सूत्रों से बाद की रचना प्रतीत होता है। मनु और याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृतियों में वशिष्ठ का नाम उल्लेख किया है। इन आधारों पर हम वशिष्ठ को 300 ईसवीपूर्व और 100 ईसवीपूर्व के बीच में रख सकते हैं। अन्य सूत्र रचनाएं निश्चित रूप से बहुत बात की हैं। इनमें विष्णु धर्म सूत्र विशेष उल्लेखनीय है। इनका रचना काल 100 ईसवी और 300 ईसवी के बीच में रखा जा सकता है। यही बात वैखानस और हिरण्यकेशी के धर्म सूत्रों के विषय में कही जा सकती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में से निम्नलिखित अधिक प्रसिद्ध है। श्रौत सूत्र, आपस्तंभ, आवश्वलायन, बौद्धायन, कात्यायन और सांख्यायन के। इनका रचना काल 600 ईसवीपूर्व और 400 ईसवीपूर्व के बीच में रखा जा सकता है। गृहस्थ सूत्र आपस्तंभ और आश्वलायन के गृह सूत्रों से अधिक प्राचीन है। इनका रचना काल 600 ईसवीपूर्व और 400 ईसवीपूर्व के बीच में है। पाद के महत्वपूर्ण गृह सूत्रों में बौद्धायन और पारस्कर के गृह सूत्र आते हैं। इनका रचना काल कुछ बात का प्रतीत होता है। धर्म सूत्र कल्प सूत्रों में धर्म सूत्रों की रचना सबसे बात को हुई प्रतीत होती है। प्रमुख धर्म सूत्रों में गौतम, बौद्धायन, आपस्तंभ और वशिष्ठ के धर्म सूत्र आते हैं। इनका रचना काल 600 ईसवीपूर्व और 300 ईसवीपूर्व के बीच में रखा जा सकता है। उपयुक्त वर्णन से प्रकट होता हो जाता है कि संपूर्ण कल्प की रचना किसी एक व्यक्ति की न होकर उसके संप्रदाय की ही रचना है। उदाहरणार्थ बौद्धायन का श्रौत सूत्र भी मिलता है और धर्म सूत्र भी, परंतु ये दोनों एक व्यक्ति अथवा एक काल की रचनाएं नहीं लगती। बौद्धायन की मृत्यु के पश्चात उनके संप्रदाय ने उनकी व्यवस्था को और आगे बढ़ाया होगा, परंतु कभी कभी कल्प के दो या तीन भाग एक ही व्यक्ति की रचना प्रतीत होते हैं। उदाहरणार्थ आपस्तंभ गृहसूत्र और धर्म सूत्र में इतना साम्य है कि वे दोनों ही एक ही व्यक्ति की रचनाएं प्रतीत होते हैं। पुनः प्रत्येक सूत्र ग्रंथ किसी न किसी प्राचीन संहिता अथवा ब्राह्मण से अपना संबंध स्थापित करता है। शाखा भेद के साथ साथ सूत्रकारों में प्रादेशिक भेद भी था। उदाहरणार्थ गौतम और वशिष्ठ उत्तर भारत के थे, परंतु बौद्धायन और आपस्तंभ दक्षिण भारत के। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन सूत्रकारों की व्यवस्था समान रूप से उत्तरी और दक्षिणी भारत के आर्य समाज के लिए थी। सूत्रों की आवश्यकता बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव और प्रचार ने ब्राह्मण धर्म के लिए एक बड़ा भारी खतरा उत्पन्न कर दिया था। बौद्ध अवस्था ब्राह्मण व्यवस्था के बहुत कुछ प्रतिकूल थी। उसके प्रचार ने ब्राह्मणों की मान्यताओं को हिला दिया था। अतः यह आवश्यक था कि बौद्ध धर्म के विरोध में ब्राह्मण पुनः अपनी व्यवस्था संगठित और प्रतिष्ठित करते, जिससे वह बौद्ध प्रचार के प्रतिकूल खड़ी रह सके। ऐसा प्रतीत होता है कि सूत्र साहित्य का एक बहुत बड़ा प्रारंभिक भाग बौद्ध प्रचार के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। वेद प्रामाण्य, देवी वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण श्रेष्ठता, चतुराश्रम व्यवस्था, निवृत्ति मार्गी विचारधारा के विरोध में गृहस्थ आश्रम की प्रतिष्ठा, जाति उत्कर्ष एवं जात्यपकर्ष, चतुर्वर्ण व्यवस्था के भीतर वर्ण संकरों का संगठन, यज्ञ, कर्मकांड आदि विषयों को लेकर सूत्रकारों ने पुनः आर्य समाज को एक सूत्र में बांधने का महनी प्रयास किया। बौद्ध धर्म ने उनकी जिन मान्यताओं पर आघात किया था, उन्हीं को सूत्रकारों ने फिर से जीवन दान देकर खड़ा किया। इस प्रकार प्रारंभिक सूत्र व्यवस्था में हम ब्राह्मणी व्यवस्था के पुनः संगठन और पुनरुन्नयन का सबल प्रयास देखते हैं। आर्यावर्त की सीमाएं। बौद्धायन धर्म सूत्र का कथन है कि आर्यावर्त विनसन के पूर्व, कालकवन के पश्चिम, हिमालय के दक्षिण और परियात्र के उत्तर में स्थित है। इसी प्रकार वशिष्ठ धर्म सूत्र का भी उल्लेख है। अंतर केवल इतना ही है कि वशिष्ठ विनसन के पूर्व न कहकर उस स्थान के पूर्व में आर्यावर्त की स्थिति बताते हैं जहां सरस्वती सरिता अदृश्य हुई थी। वस्तुतः दोनों में कोई अंतर नहीं है। महाभारत के कथानुसार विनसन एक तीर्थ था जो उसी स्थान पर स्थित था जहां सरस्वती विलुप्त हुई थी। इस प्रकार प्रारंभिक सूत्रकारों के समय तक भारतवर्ष का पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भाग पूर्णतः आर्य संस्कृति के अंतर्गत न हुआ था। यह निष्कर्ष बौद्धायन के कथन से और भी पुष्ट हो जाता है कि अवंती, अंग, मगध, सुराष्ट्र, दक्षिणी पथ, उपवित, सिंधु और सौवीर में वर्ण संकर जातियां रहती थी। इस परिस्थिति में स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिणात्य सूत्रकार बौद्धायन और आपस्तंभ की व्यवस्था दक्षिण के एकमात्र आर्य समुदाय पर ही लागू होती होगी। दक्षिण भारतवर्ष के बहुसंख्यक अनार्य समुदाय की दृष्टि में वह विदेशी व्यवस्था ही होगी। दक्षिण भारत का आर्यीकरण कालांतर की कहानी है। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, सूत्रकाल में वर्ण व्यवस्था का पुनः संगठन किया गया। जैन एवं बौद्ध धर्मों के विरोध में वह पुनः जनमत घोषित की गई। पुनः ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया। राजा अन्य वर्गों का शासक है, परंतु ब्राह्मण वर्ण का नहीं। उसे किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता। वह पूर्णतः अबध्य, अबंध्य, अदंड और बहिष्कार्य अपरिबद्ध और अपरिहार्य है। वह कर से मुक्त है। अन्य वर्गों के ऊपर उसकी श्रेष्ठता इसी बात से सिद्ध है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण 100 वर्ष के क्षत्रिय के लिए भी सम्मान्य है। वह क्षत्रिय के लिए पिता के समान है, परंतु ब्राह्मण की इस समन्तात सम्मान्यता एवं उच्चता का कारण उसकी विद्वता एवं सच्चरिता होता था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर सूत्रकारों ने भी जोर दिया है। गौतम का कथन है कि अविद्वान ब्राह्मण की अपेक्षा विद्वान ब्राह्मण को ही दान देना अधिक पुण्यकर है। धार्मिक कृतियों में भोज आदि के लिए भी विद्वान ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करने का आदेश दिया गया है। गौतम की व्यवस्था में ब्राह्मण की जीविका के लिए 3 प्रमुख साधन बताए गए हैं। पहला अध्यापन, दूसरा याजन, तीसरा प्रतिग्रह। परंतु स्पष्ट है कि बहुसंख्यक अशिक्षित अथवा अधर्म शिक्षित ब्राह्मण न अध्यापन कार्य कर सकते थे न याजन कार्य, अतः उन्हें दान परिग्रह भी प्राप्त न होता था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अन्य वर्गों के कर्मों का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया था। इस विषम परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही गौतम ने व्यवस्था की थी कि यदि उपयुक्त 3 साधनों से कोई ब्राह्मण अपना तथा अपने परिवार का निर्वाह न कर सके तो वह क्षत्रिय अथवा वैश्य का भी व्यवसाय कर सकता है। वे यह भी कहते हैं कि कुछ आचार्यों के मतानुसार ऐसा ब्राह्मण शूद्र वृत्ति भी ग्रहण कर सकता है। बौद्धायन का साक्ष्य है कि उत्तरी भारत में अनेक ब्राह्मण सैनिक कर्मा थे। आपस्तंभ ने ब्राह्मण के सैनिक कर्मानुसरण का विरोध किया है, परंतु अत्यंत संकटापन्न ब्राह्मण के लिए उसकी अनुमति भी दे दी है। इन उद्धरणों से स्पष्ट प्रकट होता है कि तत्कालीन समाज में क्षत्रिय कर्मा ब्राह्मण ही थे। बहुसंख्यक ब्राह्मण वैश्य वर्ण के व्यवसाय का भी अनुसरण करते थे। बौद्धायन ने कहा है कि वेदाध्ययन और कृषि कर्म में पर विरोध है, एक दूसरे का नाश कर देता है, परंतु यदि किसी मनुष्य में सामर्थ्य हो तो वह दोनों कर्म कर सकता है, अन्यथा उसे कृषि कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। इस व्यवस्था से स्पष्ट प्रकट होता है कि समाज में ब्राह्मण कृषक थे। जहां व्यवस्थाकारों ने ब्राह्मणों को कृषि कर्म करने की अनुमति दी है, वहां उन पर नाना प्रकार के यम नियम भी लाद दिए हैं। एक स्थान पर गौतम का कथन है कि ब्राह्मण सुगंधित पदार्थों, द्रव पदार्थों, पक्वात्र, सूक्ष्म मेघ चर्म, रंगे हुए धुले वस्त्र, दुग्ध, फल, मूल, मांस, जल, औषधियां, पशुओं, मनुष्यों, भूमि, यव, भेड़ बकरियां, घोड़ों और बैलों का विक्रय नहीं कर सकता। इस निषेधात्मक नियम से प्रकट होता है कि बहुत से ब्राह्मण वैश्यों की भांति व्यापार भी करते थे। बौद्धायन और आपस्तंभ ने ब्राह्मणों के लिए अनेक विक्रय और अविक्रय वस्तुएं बताई हैं। इन व्यवस्थाकारों के नियमों से भी यही सिद्ध होता है कि ब्राह्मण व्यापारी भी थे, परंतु वर्ण विरुद्ध कार्य करने वाले ब्राह्मण अनादर की दृष्टि से देखे जाते थे। स्वयं बौद्धायन का कथन है कि राजा वाणिज्य एवं शिल्प कर्म करने वाले ब्राह्मणों से शुद्ध कर्म करवा सकता है। यही नहीं, जीविका का अन्य साधन न होने पर ब्राह्मण शूद्र कर्म करते भी थे। क्षत्रिय सम्मान्यता की दृष्टि से ब्राह्मणों के पश्चात क्षत्रियों का स्थान था। दोनों के बीच विद्वेष भावना मिटाने तथा सहयोग भावना उत्पन्न करने के विचार से ही गौतम ने कहा था कि राजा और विद्वान ब्राह्मण दोनों से संसार में धर्म की रक्षा होती है। ब्राह्मणों के सहयोग से क्षत्रिय सुख शांति प्राप्त करता है, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से प्रत्येक व्यवस्थाकार ने क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण ही की प्रभुत्ता आरोपित की है। पीछे कहा जा चुका है कि आपस्तंभ के विचार से 10 वर्षीय ब्राह्मण भी शतवर्षीय क्षत्रिय के लिए सम्मान्य है। व्यवस्थाकारों ने अपने दंड विधान में क्षत्रियों की अपेक्षा ब्राह्मणों को जो अनेक सुविधाएं दी हैं, उनसे भी ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण का अपमान करे तो उस पर 100 काशार्पण का जुर्माना होगा, परंतु यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करे तो उस पर केवल 50 काशार्पण जुर्माना होगा। प्रत्येक वर्ण को राजकर देना पड़ता था, परंतु ब्राह्मण उससे मुक्त था। ब्राह्मण की भांति क्षत्रिय को भी अध्ययन, यज्ञ और दान का अधिकार था। राजा को त्रिवेदज्ञ होना चाहिए। आपस्तंभ ने अनुमति दी है कि आपद काल में ब्राह्मण क्षत्रिय से विद्या अध्ययन कर सकता है। इससे प्रकट होता है कि समाज में क्षत्रिय आचार्य भी विद्यमान थे। क्षत्रिय का प्रधान धर्म शासन करना था, सब मनुष्यों की रक्षा करना था, परंतु ऐसा संभव है कि समस्त क्षत्रियों को राजकीय प्रशासन और सेना में स्थान न मिलता है। उस स्थिति में वे वर्ण विरुद्ध कार्यों का अनुसरण करके भी अपनी जीविका का उपार्जन करते होंगे। ऊपर क्षत्रिय आचार्यों का उल्लेख किया जा चुका है। यही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर क्षत्रिय वैश्य धर्म भी कर सकते थे। बौद्धायन का मत है कि क्षत्रियों को अन्नदान का व्यवसाय न करना चाहिए। इस निषेधात्मक व्यवस्था से सिद्ध होता है कि कुछ क्षत्रिय रुपए का लेन देन करते थे। थे और उस पर ब्याज लेते थे। ब्याज वृत्ति उनकी जीविका का साधन थी। पराशर और गोभिल गृहस्थों का मत है कि राजता शौर्य पर आधारित है, जन्म पर नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय इतिहास में क्षत्रिय वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्णों के व्यक्तियों के राजत्व के भी उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने अपने भुजबल से राज्य तो प्राप्त कर लिया था, परंतु फिर भी वे क्षत्रिय न हो सके। कर्म के आधार पर जात्युपकर्ष और जात्यपकर्ष के मत सिद्धांत मात्र रहे, समाज में उनका व्यवहारिक प्रयोग कभी न हो सका। वैश्य समानता की दृष्टि से वैश्य वर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्णों के बाद आता है। सूत्रकाल की दंड व्यवस्था से भी यही सिद्ध होता है कि गौतम के मतानुसार यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय का अपमान करे तो उसे 50 काशार पर जुर्माना देना होगा, परंतु यदि वह किसी वैश्य का अपमान करे तो उसे केवल 25 काशार पर देना होगा। ब्राह्मण और क्षत्रियों की भांति वैश्यों को भी अध्ययन भी यज्ञ और दान का अधिकार था। आपस्तम ने ब्राह्मणों को अनुमति दी थी कि आवश्यकता पड़ने पर वे वैश्यों से भी विद्या अध्ययन कर सकते हैं। इस व्यवस्था से अनुमान होता है कि कुछ वैश्य भी अध्ययन का कार्य करते थे, परंतु वैश्यों का वेदाध्ययन का अधिकार प्रायः सिद्धांत मात्र ही रहा। अधिकांश वैश्यों ने अध्ययन और यज्ञादि कर्मों की ओर विशेष ध्यान दिया था। कृषि वाणिज्य आदि अर्थकारी व्यवसायों में संलग्न वैश्य वर्ण के पास न समय था न रुचि ही, जो वे अध्ययन आदि में प्रवृत्त होते। बौद्धायन की व्यवस्था की वेदाध्ययन और कृषि परस्पर विरोधी हैं और सामान्य मनुष्य दोनों का एक साथ अनुसरण नहीं कर सकता वैश्य वर्ण पर पूरी तरह से लागू हुई थी। उसने वेदाध्ययन को छोड़ कृषि कर्म को अपनाया था। इस परिस्थिति में वैश्य आचार्यों के उदाहरण सिद्धांत मात्र अथवा अपवाद मात्र ही है। वैश्यों का प्रधान कर्म सदैव कृषि वाणिज्य पशुपालन और कुशीत ही रहा, परंतु अन्य वर्णों की भांति वैश्य वर्ण भी आपातकाल में वर्ण विरुद्ध व्यवसाय का अनुसरण कर सकता था। गौ ब्राह्मण तथा वर्णों की रक्षा के लिए वह शास्त्र भी ग्रहण कर सकता था। शूद्र चौथा वर्ण शूद्रों का था। प्रारंभ में इस वर्ण में अकार्य विजित अथवा कृत मनुष्य थे। गौतम शूद्र को अनार्य कहते हैं। बौद्धायन ने उसके लिए कृष्ण वर्ण शब्द का प्रयोग किया है। कालांतर में अनार्य जातियों के साथ आर्यों की वर्ण संकर जातियां भी शूद्र समुदाय में परिगणित होने लगी। सूत्रकारों की व्यवस्था के अनुसार शूद्र नितांत अधिकारहीन और प्रतिष्ठाहीन था। उसका प्रमुख धर्म अन्य वर्णों की सेवा था। उसका समाज में निम्नतम स्थान था। वशिष्ठ उसे शमशान की भांति अपवित्र मानते हैं। वह अन्य वर्णों के फेंके हुए वस्त्रों, आसनों, पदभागों और आतपत्रों को धारण करता था। उसकी अपनी कोई संपत्ति न थी। शूद्र की स्वयं अर्जित संपत्ति भी द्विजातियों की समझी जाती थी। उसकी हत्या करने वाले को वही दंड मिलना चाहिए जो कौवे, उल्लू, मेढक अथवा कुत्ते की हत्या करने वाले को मिलता है। शूद्र को अध्ययन और यज्ञ का अधिकार न था। गौतम की व्यवस्था के अंतर्गत यदि वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण करे तो उसकी जीवा काट लेनी चाहिए। यदि वह उन्हें कंठस्थ करे तो उसके शरीर के दो टुकड़े कर देने चाहिए। यदि वह जानबूझकर उन्हें सुने तो उनके कानों में 3 अथवा 1,00,000 गलाकर भर देना चाहिए। उसके सामने अन्य व्यक्तियों को भी वेदाध्ययन न करना चाहिए। सूत्रकारों की दंड व्यवस्था में भी शूद्रों का निम्न स्थान है। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है कि क्षत्रिय और वैश्य का अपमान करने पर ब्राह्मण पर क्रमशः 50 और 25 काशार्पण का जुर्माना होता था, परंतु शूद्र के प्रति उसके अपराध में उसे कोई दंड न दिया जाता था। सामान्य परिस्थिति में ब्राह्मण के लिए शूद्र का दान भी अग्राह्य था। वह उसे आपातकाल में ग्रहण कर सकता था। अन्य जातियाँ उपयुक्त 4 वर्णों के अतिरिक्त समाज में बहुसंख्यक जातियाँ और उपजातियाँ भी थी। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है इनकी उत्पत्ति अनेक कारणों से हुई थी, परंतु सूत्रकारों ने उन्हें अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का ही परिणाम बताया और चतुर्वर्णों के बाहर उन्हें वर्ण संकर जातियों के रूप में प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार बहुसंख्यक जातियों के होते हुए भी वर्णचार ही रहे। ब्राह्मणों की विवेचनात्मक बुद्धि ने प्राचीन चतुर्वर्ण व्यवस्था को अक्षय रखा। सूत्र साहित्य में वर्णित कुछ जातियों का उल्लेख कर देना आवश्यक है। अम्बष्ट कदाचित यह प्रादेशिक नाम है और प्रारंभ में अम्बष्ट प्रदेश के आनार्यों के लिए ही प्रयुक्त हुआ होगा, परंतु ब्राह्मण व्यवस्था कार्यों की दृष्टि में यह वर्ण संकर जाति का नाम है। गौतम के अनुसार अम्बष्ट क्षत्रिय पुरुष और वैश्य स्त्री के संतान है। बौद्धायन इसे ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री के संतान मानते हैं। आयोगव गौतम की व्यवस्था में इसे शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री के संतान कहा गया है, परंतु बौद्धायन इसे वैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री के संतान मानते हैं। उग्र गौतम की दृष्टि में यह वैश्य पुरुष अशुद्र स्त्री की संतान है, परंतु बौद्धायन इसे क्षत्रिय पुरुष अशुद्र स्त्री की संतान घोषित करते हैं। चांडाल्य शुद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के संबंध से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने इस जाति को महापातकी माना है। गौतम ने चांडालों का उल्लेख कुत्तों और कौवे की कोटि में किया है। आपस्तंभ में भी चांडालों को अति निकृष्ट मानते हैं। निषाद बौद्धायन इसे ब्राह्मण पुरुष अशुद्र स्त्री की संतान बताते हैं, परंतु गौतम का मत है कि यह ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री की संतान है। मागध गौतम के मतानुसार यह वैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री की संतान है। इसके साथ ही गौतम का यह भी कथन है कि कुछ आचार्य इसे वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की संतान मानते हैं। बौद्धायन ने इसे शुद्र पुरुष और वैश्य स्त्री की संतान घोषित किया है। रथकार प्रारंभ में रथकारों का व्यावसायिक वर्ग था, परंतु कालांतर में यह जाति के रूप में संगठित हो गया। बौद्धायन ने इसे वैश्य पुरुष और शुद्र स्त्री की संतान माना है। वैदेहक गौतम इसे शुद्र पुरुष और क्षत्रिय स्त्री की संतान बताते हैं, परंतु बौद्धायन की दृष्टि में यह वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की संतान है। सुत गौतम और बौद्धायन दोनों ही इसे क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की संतान बताते हैं। अन्य वर्ण संकर जातियाँ, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने विभिन्न जातियों की उत्पत्ति का कारण अनुलोम प्रतिलोम विवाह ही बताते हैं। चतुर्वर्णों में धर्म विरुद्ध विवाहों एवं संबंधों से अनेकानेक जातियाँ उत्पन्न हुई, उनमें से कुछ जातियों का ऊपर उल्लेख किया गया है। फिर इन जातियों ने अन्यान्य धर्म विरुद्ध विवाह और संबंध स्थापित किए, जिससे अन्य उपजातियां उत्पन्न हुई। ये जातियां और उपजातियां बढ़ती गईं और ब्राह्मण व्यवस्थाकार इस वर्णसंकर जातियों को विविध नाम देते गए। उदाहरणार्थ ऊपर बताया जा चुका है कि धर्म विरुद्ध विवाह अथवा संबंध से ही वैदेहक और अम्बष्ट नामक दो जातियां उत्पन्न हुई थी। कालांतर में वैदेहक पुरुष और अम्बष्ट स्त्री के पारस्परिक संबंध से एक नवीन वर्णसंकर जाति उत्पन्न हुई। बौद्धायन इसे वेण के नाम से पुकारते हैं। इसी प्रकार निषाद पुरुष और शुद्र स्त्री से जो संतान उत्पन्न हुई उसे बौद्धायन पौलकश के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार वर्ण से जातियां उत्पन्न हुई और उन जातियों के से अन्य वर्ण संकर जातियां अनुलोम और प्रतिलोम विवाह उत्तरोत्तर इनकी संख्या बढ़ाते रहे। ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने इस विशाल जन समुदाय को चतुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही नामकरण अधिकार और कर्तव्य आदि देकर अपनी व्यापक संगठनशीलता का परिचय दिया था, परंतु यह कहना बड़ा कठिन है कि उनकी यह व्यवस्था अपने सर्वांग रूप में किस काल में किस सीमा तक व्यवहित हुई थी। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि समाज में ब्राह्मण की सर्वश्रेष्ठता और शूद्रों की निम्नता बहुत कुछ स्वीकृत हो चुकी थी। चतुराश्रम व्यवस्था, सूत्र साहित्य में हम आश्रम व्यवस्था को सम्यक रूप से संगठित देखते हैं। गौतम आपस्तंभ वशिष्ठ आदि सभी व्यवस्थाकार आश्रमों की संख्या 4 बताते हैं। साधारणतया मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है और वह 25-25 वर्ष के काल को लेकर चारों आश्रमों में नियोजित की गई है। इस प्रकार 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम की कल्पना की गई है। परंतु विभिन्न व्यवस्थाकारों की योजना में इन कालों में 5 से 10 वर्ष का अंतर पड़ जाना स्वाभाविक ही था। उदाहरणार्थ अधिकांश व्यवस्थाकारों ने ब्रह्मचारी का अध्ययन काल 12 वर्ष तक माना है। यह अध्ययन काल उपनयन संस्कार के पश्चात ही प्रारंभ होता था, परंतु भिन्न भिन्न वर्ण के उपनयन संस्कार की उपयुक्त आयु भिन्न भिन्न थी। उदाहरणार्थ आश्वलायन के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में होना चाहिए। इस योजना के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि क्रमशः 20, 23 और 24 वर्ष आयु तक निश्चित होती है। साधारणतया ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थाश्रम और तदुपरांत वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ होता था, परंतु वशिष्ठ के मतानुसार मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात सीधे परिवारजक धर्म ग्रहण कर सकता है। इस स्थिति में वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम की अवधि बहुत लंबी हो जाती है। इसी प्रकार बौद्धायन योजिका में संन्याश्रम 75 वर्ष की आयु में प्रारंभ न होकर 70 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। परिणामतः प्रत्येक आश्रम के प्रवेश और समाप्ति का काल भिन्न भिन्न हो जाता है, उनका एक सा काल चक्र नहीं है। पुनः यह स्मरण रखना चाहिए कि यह आश्रम व्यवस्था विजातियों के लिए ही थी, शूद्र समुदाय इससे बाहर था। शूद्रों के लिए एकमात्र गृहस्थ आश्रम ही बताया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम प्रायः समस्त सूत्रकारों ने आश्रम अवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम का सर्वप्रथम वर्णन किया है, परंतु आपस्तम्ब धर्म सूत्र में इसका उल्लेख गृहस्थ आश्रम के पश्चात हुआ है। स्पष्ट है कि इस व्यवस्थाकार ने कालचक्र के अनुसार नहीं वरन महत्व के अनुसार ही गृहस्थ आश्रम का उल्लेख ब्रह्मचर्य आश्रम के पहले किया है। ब्रह्मचर्य आश्रम उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था। उपनयन का अर्थ है आचार्य के समीप ले जाना अथवा वह संस्कार जिसके द्वारा ब्रह्मचारी को आचार्य के समीप ले जाया जाए। शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्ण को उपनयन का अधिकार था, अतः वे सब ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट हो सकते थे। सूत्र साहित्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि स्त्रियों को भी उपनयन एवं वेदाध्यन का अधिकार था। आश्वलायन ने स्त्रियों के समापवर्तन संस्कार का उल्लेख किया है। इससे प्रकट होता है कि वे भी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर विद्याध्यन करती थी। गोविल गृह सूत्र में विवाह के समय कन्या को यज्ञोपवीत धारण किए हुए दिखाया गया है। इससे भी नारी के उपनयन संस्कार का बोध होता है। उपनयन संस्कार से ही ब्रह्मचारी यज्ञोपवीत धारण करता है। बौधायन और वशिष्ठ का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को सदैव यज्ञोपवीत धारण किए रहना चाहिए। यह अत्यंत पवित्र समझा जाता था। साधारणतया ब्रह्मचारी दो वस्त्र धारण करता था, उत्तरी और वास। व्यवस्थाकारों ने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तरी और वास की कल्पना की है। उदाहरणार्थ आश्वलायन बौधायन वशिष्ठ के अनुसार ब्राह्मण का उत्तरी अजीन का, क्षत्रिय का रोग का और वैश्य का गौचर्म अथवा अजाचर्म का होना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक पृथक प्रकार के वास की कल्पना की गई है। वस्त्रों की भांति ब्रह्मचारी की मेखला और दंड भी वर्ण के अनुसार पृथक पृथक प्रकार के होते थे। ब्रह्मचारी को नियमित रूप से भिक्षार्जन करना पड़ता था। यह नियम उसमें अल्पभांडता, निर्भिमान और साधना के गुण उत्पन्न करने के लिए बताया गया है। भिक्षार्थी ब्रह्मचारी को निराश करने वाला व्यक्ति पातकी समझा जाता था। गौतम ने भिक्षा दान करना प्रत्येक गृहस्थ का धार्मिक कर्तव्य बना दिया था। इसी प्रकार ब्रह्मचारी आश्रम अपनी उदर पूर्ति के लिए गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर था। उधर ब्रह्मचारी जीविका की चिंता से मुक्त होकर एकमात्र अध्ययन एवं चरित्र निर्माण में संलग्न रहते थे, जिससे वे अंतर में अपने पालक पोषक समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को सुचारू रूप से वहन कर सके। ब्रह्मचारी का जीवन अत्यंत अनुशासनशील और साधनामय था। व्यवस्थाकारों ने उसके भिक्षार्जन, स्नान, भोजन, संयम, गुरु शुश्रूषा, संहिता दान आदि के विषय में विविध नियम बना रखे थे। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि प्रायः 12 वर्ष तक रहती थी। इस काल के पश्चात ब्रह्मचारी लगभग 20-25 वर्ष का हो जाता था और तब उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ संस्कार से होता था, उसी प्रकार उनकी समाप्ति की भी एक संस्कार विशेष से होती थी। इसी स्नान अथवा समापवर्तन संस्कार कहते हैं। आश्वलायन का कथन है कि अध्ययन समाप्त करने के पश्चात ब्रह्मचारी को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार पारस्कर गृह सूत्र में उल्लेख है कि वेदाध्यन करने के पश्चात गुरु की अनुमति से ही ब्रह्मचारी को स्नान करना चाहिए। कभी कभी ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ने के पश्चात विवाह होने में कुछ विलम्ब हो जाता है। ब्रह्मचर्यावस्था और गृहस्थावस्था के बीच की अवस्था स्नातक अवस्था कहलाती थी। अध्ययन समाप्त होने के पश्चात स्नान करने के कारण ही ब्रह्मचारी स्नातक कहलाता था। गृहस्थाश्रम, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, स्नान समापवर्तन संस्कार के पश्चात ब्रह्मचारी विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। समस्त सूत्र साहित्य में गृहस्थाश्रम को समस्त आश्रमों में सर्वोच्च एवं सर्वप्रधान माना है। गौतम का कथन है कि वस्तुतः आश्रम एक ही है और वह है गृहस्थ आश्रम। यही मत बौधायन का भी है। आपस्तम्ब ने तो चतुराश्रमों में सर्वप्रथम गृहस्थाश्रम का ही नामोल्लेख किया है। ब्राह्मण व्यवस्था में गृहस्थाश्रम की सर्वप्रधानता के अनेक कारण थे। पहला, ब्राह्मण धर्म ऋग्वैदिक काल से ही प्रवृत्ति प्रधान रहा है, अतः उसने निवृत्ति मूलक ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों की अपेक्षा प्रवृत्ति मूलक गृहस्थाश्रम को ही अधिक महत्व दिया है। दूसरा, ब्राह्मण धर्म यज्ञ प्रधान और कर्मकांड प्रधान रहा है। इसके अनुसार पितरों की शांति और संतोष के लिए अनेक प्रकार के याज्ञिक कार्य एवं धार्मिक क्रियाएं आवश्यक थीं। इन्हें करने के लिए पुत्र की आवश्यकता थी, परंतु पुत्र तो गृहस्थाश्रम की ही उत्पत्ति था। अन्य आश्रमों में उसकी उत्पत्ति संभव न थी। इसी से गृहस्थाश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझा गया। तीसरा, अन्य तीनों आश्रमों अपने निर्वाह के लिए गृहस्थाश्रम की दानशीलता और उदारता पर निर्भर थे। यदि गृहस्थ भिक्षा दान आदि न करते तो शेष तीनों आश्रमों का अस्तित्व ही न रहता। चौथा, पहले बताया जा चुका है कि जैन एवं बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वरूप ब्राह्मणों ने अपनी धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था का पुनः संगठन किया था। सूत्र साहित्य का प्रारंभिक भाग इसी संगठन का परिणाम है। जैन एवं एवं बौद्ध धर्म ने निर्वाण के लिए गृह त्याग आवश्यक बताया। जैन एवं बौद्ध प्रचारकों के आवाहन के परिणाम स्वरूप अनेकानेक स्त्री पुरुष अपने पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों को पूर्ण किए बिना ही गृह त्याग करके भिक्षु बनने लगे। इससे समाज के लिए एक भारी संकट उत्पन्न हो गया था। अतः इस संकट का निराकरण करने एवं समाज को भिक्षु श्रृंखलता से बचाने के लिए ब्राह्मणों ने इस प्रकार के अनुत्तर दायित्वपूर्ण गृह त्याग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि परमार्थ के लिए गृहस्थ जीवन बाधक नहीं है। गृहस्थ जीवन के विधि निषेधों का पालन करने से ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार के विचारों का प्रतिपादन करके ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने निवृत्ति मार्ग विचारधारा के विरोध में गृहस्थाश्रम को सबसे अधिक महत्ता और प्रधानता दी। संस्कार गृहस्थाश्रम में संस्कारों का विशेष महत्व है। संस्कार का क्षेत्र इतना व्यापक है कि वे मनुष्य के जन्म से मरण तक होते रहते हैं। प्रारंभ में यज्ञ के पूर्व मनुष्य अपने नख केश कटाकर स्नानादि करके शुद्ध होता था। उसके इस शुद्धिकरण को ही संस्कार कहते थे, परंतु सूत्रकाल तक आते आते संस्कार वर्तमान अर्थ में प्रयुक्त होने लगा था। संस्कार कोरे कर्मकांड न थे, ये मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक चारित्रिक एवं सांस्कृतिक विकास से संबंधित थे। संस्कार विशेषतया द्विजातियों के लिए ही थे। शूद्रों के लिए कुछ संस्कार अवश्य होते थे, परंतु उनकी क्रियाएं मंत्रहीन होती थी। स्त्रियों के भी संस्कार होते थे, परंतु जात कर्म से लेकर चूड़ा कर्म तक वे मंत्रहीन होते थे। हाँ, विवाह संस्कार उनका भी मंत्र सहित होता था। गौतम ने निम्नलिखित 40 संस्कार बताए हैं, गर्भाधान, मुंसमन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, अन्न प्राशन, चील, उपनयन, चार व्रत, समापवर्तन, विवाह, 5 महायज्ञ, 7 पाक यज्ञ, 7 हवीर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ। अन्य व्यवस्थाकारों के अनुसार संस्कारों की संख्या इससे कम है। यहाँ कुछ संस्कारों का वर्णन कर देना आवश्यक है। गर्भाधान, गौतम और बौधयन आदि व्यवस्थाकारों ने इसका सर्वप्रथम उल्लेख किया है। उन्होंने गर्भाधान के पूर्व दंपति के लिए उचित काल और आवश्यक धार्मिक कर्मों का उल्लेख किया है। पुंसवन, यह संस्कार पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। इसे कब किया जाए इस विषय पर व्यवस्थाकारों में मतभेद है। पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार यह संस्कार गर्भाधान के द्वितीय अथवा तृतीय मास में होना चाहिए, परंतु गोभिल, काठक और मानव गृह सूत्रों के अनुसार यह गर्भाधान के क्रमशः तीसरे, पांचवें और आठवें मास में होना चाहिए। सीमंतोनयन, इस संस्कार में सीमंतकरण होता है। इसके करने के लिए काल के विषय में मतभेद है, परंतु प्रत्येक व्यवस्थाकार गर्भाधान के तीसरे और आठवें मास के बीच में ही इसे रखता है। जात कर्म, आश्वलायन के मतानुसार यह संस्कार पुत्र प्राप्ति होते ही तुरंत कर देना चाहिए, उस समय जबकि जननी के पूर्व अन्य किसी भी व्यक्ति ने उसे न देखा हो। इस अवसर पर पिता नवजात शिशु का स्पर्श करता है और उसे स्वर्ण मिश्रित घी तथा मधु खिलाता है। उसके कानों में मेधा जनन पड़ता है और उसे आशीर्वाद देता है। नामकरण, इस संस्कार में शिशु का नाम रखा जाता है। बौद्धायन के मतानुसार यह संस्कार जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन होना चाहिए, परंतु गोविल ने इसके लिए 1 वर्ष पश्चात भी करने की अनुमति दी है। निष्क्रमण, इस संस्कार में सर्वप्रथम शिशु घर के बाहर निकाला जाता है। यह जन्म के पश्चात 4थे मास में होता था। अन्नप्राशन, इस संस्कार में शिशु सर्वप्रथम अन्न खाता है। यह जन्म के पश्चात 6थे मास में होता था। चौल, इस संस्कार में शिशु के शीश के बाल सर्वप्रथम मुड़वाए जाते थे और उसके स्थान पर शिखा रखी जाती थी। यह शिशु के 3 वर्ष के आयु में संपादित होता था। उपनयन, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, इस संस्कार में बालक आचार्य के पास भेजा जाता है और यज्ञोपवीत धारण करके ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट होता है। इसके संपादन काल के विषय में मतभेद है। आश्वलायन के अनुसार ब्राह्मण का उपनयन 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का 11 वर्ष की आयु में और वैश्य का 12 वर्ष की आयु में होना चाहिए। काठक गृह सूत्र में तीनों वर्णों के लिए यह आयु क्रमशः 7, 9 और 11 वर्ष की बताई गई है। पंच महायज्ञ, उपयुक्त संस्कारों की भांति गृहस्थ के जीवन में पंच महायज्ञों का विशेष महत्व है। इस महत्व को देखते हुए गौतम ने इन पंच महायज्ञों को भी संस्कार माना है। ये यज्ञ निम्नलिखित हैं। पहला, ब्रह्म यज्ञ। इस यज्ञ के द्वारा मनुष्य अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं आदर भावना प्रकट करता था। ये प्राचीन ऋषि वेदज्ञ और परम ज्ञानी थे। अतः इनके प्रति कृतज्ञता प्रदर्शन का सर्वप्रथम ढंग विद्या अध्ययन करना था। इसी से व्यवस्थाकारों ने ब्रह्मयज्ञ के अवसर पर स्वाध्याय करने का नियम बनाया था। दूसरा, देवयज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शन के निमित्त ही इस यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ था। इस अवसर पर अग्नि, इंद्र, प्रजापति, सोम, पृथ्वी आदि देवी देवताओं के नाम के साथ स्वाहा कहकर अग्नि में समिधादान किया जाता था। तीसरा, प्रतियज्ञ, मनुष्य अपने पितरों के प्रति भी निरपेक्ष नहीं रह सकता, उनके प्रति अपनी श्रद्धा एवं भक्ति प्रकट करने के लिए ब्राह्मण व्यवस्थाकारों ने प्रतियज्ञ की प्रतिष्ठा की। इस यज्ञ में पितरों के लिए तर्पण, बलिहरण अथवा श्राद्ध का आयोजन होता था। चौथा, मनुष्य यज्ञ, संपूर्ण मनुष्य मात्र के प्रति भारतीयों की निर्विशेष उत्तरदायित्व भावना तथा सहृदयता के परिणाम स्वरूप ही इस यज्ञ का जन्म हुआ था। इसका प्रदर्शन व्यवस्थाकारों ने अतिथि सत्कार की अनिवार्यता द्वारा किया। अतिथि चाहे किसी भी जाति अथवा स्थिति का हो, वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मान्य था। बौधायन और आश्वलायन ने चांडाल अतिथि तक के सत्कार का नियम बनाया था। संपूर्ण मनुष्य जाति के प्रति इससे अधिक आदर की भावना और क्या हो सकती है। अतिथाय की उदात्त भावना का यहाँ तक विकास हुआ कि दूसरों को भोजन दान किए बिना स्वयं भोजन करना अधर्म समझा जाने लगा। पांचवा, भूत यज्ञ, भारतीयों की सहृदय भावना मनुष्य मात्र तक ही सीमित न रही, उसने अपने व्यापक क्षेत्र में समस्त प्राणियों को समेट लिया। प्राणी मात्र के प्रति भारतीयों की सुधार भावना के परिणाम स्वरूप ही भूत यज्ञ का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत व्यवस्थाकारों ने समस्त जीवों का बलिदान का नियम बनाया। संपूर्ण विश्व बलि प्राप्ति का अधिकारी बन गया। एकमात्र स्वयं भोजन करना पाप कर्म समझा जाने लगा। श्रौत यज्ञ, सूत्र साहित्य बहुसंख्यक श्रौत यज्ञों का भी वर्णन करता है। इनमें अगन्याधी, दशपूर्णमास, चतुर्मास, वैश्वदेव, शुनानशिरी, अग्निष्टोम, वाजपेयी, राजश्रयु और अश्वमेघ विशेष प्रसिद्ध हैं। इन यज्ञों और कर्मकांडों की क्रियाएं बड़ी ही जटिल थीं, अतः सामान्यतः पुरोहितों की सहायता के बिना इनका करना बड़ा कठिन था। इसका परिणाम यह हुआ कि इन श्रौत यज्ञों ने ब्राह्मण पुरोहित को और भी अधिक प्रतिष्ठा प्रदान की। पंच महायज्ञ और श्रौत यज्ञों में कतिपय आधारभूत अंतर दिखाई देते हैं। पहला, पंच महायज्ञ सरल और सुबोध थे। इन्हें कोई भी गृहस्थ स्वयं कर सकता था। इन्हें कराने के लिए पुरोहित के माध्यम की आवश्यकता न थी, परंतु इनके विरुद्ध श्रौत यज्ञ नितांत जटिल और दुर्बोध होते थे। वे विशेषज्ञ पुरोहितों की सहायता के बिना न किए जा सकते थे। दूसरा, पंच महायज्ञों का आधार बड़ा व्यापक था। उनमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, वरन ऋषियों, देवों, पितरों, संपूर्ण मानव जाति एवं संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति कृतज्ञता, सहृदयता और उदारता की भावना अंतर्निहित थी। इनके विरुद्ध श्रौत यज्ञों का आधार स्वार्थ था। उनका ध्येय यजमान को स्वर्ग, समृद्धि अथवा किसी अन्य साध्य की प्राप्ति कराना था। तीसरा, पंच महायज्ञ थोड़े से समय में ही समाप्त किए जा सकते थे, परंतु कोई श्रौत यज्ञ तो वर्षों तक चलता था। उदाहरणार्थ राजस्व यज्ञ 2 वर्षों तक चलता था। चौथा, पंच महायज्ञ नितांत अंशात्मक थे, परंतु अनेक श्रौत यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी। उदाहरणार्थ अग्निष्टोम में पशु बलि दी जाती थी, अश्वमेघ में तो स्वयं अश्व की बलि सर्वविदित है। पांचवा, पंच महायज्ञों को कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य कर सकता था, परंतु प्रत्येक श्रौत शुद्ध करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार न था। उदाहरणार्थ वाजस्य को ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही कर सकता था। वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थाश्रम के संपूर्ण उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के पश्चात व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, परंतु कतिपय व्यवस्थाकारों ने ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात सीधे वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने की भी अनुमति दे रखी थी। गौतम ने वानप्रस्थ के लिए वैखानस शब्द का प्रयोग किया है। बौधायन के अनुसार वानप्रस्थ से उस व्यक्ति का बोध होता है जो वैखानस शास्त्र में उल्लिखित नियमावली का पालन करता है। इससे अनुमान होता है कि सूत्रकाल से बहुत पूर्व कोई वैखानस शास्त्र बन चुका था। वानप्रस्थ मनुष्य का जीवन बड़ा साधनामय होता था। उसे केश, नख आदि धारण करने पड़ते थे। गृह त्याग कर उसे इतस्तः वृक्षादि के नीचे रहना पड़ता था। जीर्ण शीर्ण वस्त्र अजीन अथवा वृक्ष की त्वचा से ही वह अपना शरीर ढकता था। बौधायन के वर्णन से प्रकट होता है कि बहुत वानप्रस्थ मनुष्य अन्य का परित्याग कर एकमात्र कंद मूल फल साग पत्र आदि जल ग्रहण करते हुए कठोर शारीरिक तपश्चर्या के साथ साथ ये विद्याधन में रत रहते थे। आपस्तम्भ के अनुसार वानप्रस्थ व्यक्ति को वेद, उपनिषद आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन और मनन करना चाहिए। संन्यास, अंतिम आश्रम संन्यास का था। सूत्र साहित्य में संन्यासी, भिक्षु, परिवार्ज, परिवारजक, यति, मौन आदि नामों से पुकारा गया है। सन्यासी मनुष्य पूर्ण विरक्त होता है, वह ब्रह्मचारी अहिंसावर्ती निर्द्वंद सत्यनिष्ठ क्रोधहीन और क्षमाशील होता है। वह फेंके हुए फटे पुराने कपड़ों को धारण करता है। कुछ सन्यासी काषाय वस्त्र भी धारण करते थे, उनके हाथ में सदैव दंड रहता है। व्यवस्थाकारों के अनुसार कुछ सन्यासी एक दंडी होते थे और कुछ त्रिदंडी। सन्यासी के जीवन भिक्षा पर ही निर्भर रहता था। व्यवस्थाकारों में इस विषय पर मतभेद था कि सन्यासी को एकमात्र ब्राह्मण से ही भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए अथवा दिव्य जाति से भी। यही नहीं, भिक्षा के विषय में व्यवस्थाकारों ने अन्य अन्य नियम भी बनाए थे। सन्यासी को केवल 5, 7 अथवा 10 द्वारों से ही भिक्षा लेनी चाहिए। भिक्षा के निमित्त उसे दिन भर में केवल एक ही बार गांव अथवा नगर में प्रवेश करना चाहिए। इन परिस्थितियों में भिक्षावर्ती सन्यासी का अल्पाहारी होना निश्चित ही था। इस प्रकार अपने निर्वाह के लिए सन्याश्रम भी अन्य आश्रमों की भांति गृहस्थाश्रम की उदारता और दानशीलता पर निर्भर था। नारी समाज, बाल विवाह का अभाव। सूत्र साहित्य से नारी समाज पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। उसमें विवाह संबंधी जो नियम है उनसे स्पष्ट हो जाता है कि सूत्रकालीन भारत में बाल विवाह का प्रचलन न था। विवाह युवक और युवतियों के ही होते थे। उदाहरणार्थ बौद्ध धर्म का कथन है कि विवाह के होते समय यदि कन्या के मासिक धर्म प्रारंभ हो जाए तो नियमानुसार प्राश्चित करना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि विवाह के समय कन्या वैश्यक होती थी। अपस्तंभ, सांख्ययन और पारस्कर का मत है कि विवाह के 3 दिन पश्चात नवविवाहित दंपति का चतुर्थी कर्म होना चाहिए। चतुर्थी कर्म उनके समागम का विधान था। इससे भी विवाह के समय वरवधु की आवश्यकता सिद्ध होती है। नारी शिक्षा, आश्वलायन गृह सूत्र में स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख है। यह संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि की समाप्ति पर होता था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रियां भी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी। गोविल गृह सूत्र के कथनानुसार विवाह के अवसर पर वर और वधु दोनों साथ साथ मंत्रोच्चारण करते थे। काठक गृह सूत्र भी दोनों व्यक्तियों के द्वारा अनुवाद पाठ के जाने का उल्लेख करता है। इन उल्लेखों से सिद्ध होता है कि वर की भांति वधु को भी वैदिक ज्ञान होता था। आश्वलायन गृह सूत्र में ऋषि तर्पण के समय गार्गी, वाचवनवी, वड़वा, प्रतिथेयी और सुलभा मैत्री आदि ऋषि नारियों के नाम भी लेने का आदेश है। इससे प्रकट होता है कि आश्वलायन के समय भी विदुषी नारियों का निर्व्याज सम्मान होता था। हारित के एक उद्धरण से प्रकट होता है कि सूत्रकाल में नारियां 2 वर्गों में परिगणित होती थीं। एक वर्ग की नारियों को सधोवधु कहते थे। ये विवाह के पूर्व तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई अध्ययन करती थी और उसके बाद विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होती थी। दूसरे वर्ग की नारियां ब्रह्मवादिनी कहलाती थीं। ये विवाह तथा गृहस्थ जीवन का विचार त्याग कर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थीं और विद्या अध्ययन करती थीं। यही नहीं, हारित का उपयुक्त उद्धरण नारी शिक्षा के ऊपर थोड़ा बहुत और भी प्रकाश डालता है। इसके अनुसार नारियों का उपनयन संस्कार होता था, परंतु उनकी शिक्षा प्रायः घर पर ही होती थी और वे अजीन, चीर, जटा आदि धारण करने और भिक्षार्जन करने के नियमों से मुक्त थी। सपिंड विवाह, पिंड का साधारण अर्थ है शरीर। इस दृष्टि से सपिंड विवाह का अर्थ उन 2 व्यक्तियों के विवाह से है जिनमें एक ही शरीर के समान अंश विद्यमान हो। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार के विवाह को रक्त संबंध कह सकते हैं। गौतम और वशिष्ठ का मत है कि सपिंड संबंध पिता के पक्ष में 7 पीढ़ियों तक और माता के संबंध में 5 पीढ़ियों तक रहता है। व्यवस्थाकारों ने सपिंड विवाह का घोर विरोध किया है। इस दृष्टि से चाचा, मामा, फूफा, मौसा आदि की पुत्रियों के साथ विवाह करना महान पातक समझा जाता था। बौद्धायन धर्म सूत्र से पता चलता है कि दक्षिण भारत में मामा और फूफा की पुत्री के साथ विवाह धर्म विहित समझा जाता था, परंतु उत्तरी भारत में यह प्रथा न थी। स्वयं बौद्धायन ने इस प्रकार के विवाह का विरोध किया है। सगोत्र विवाह, गोत्र से उस पूर्वज के नाम का बोध होता है जिससे कोई समुदाय उत्पन्न हुआ माना जाता है। प्रायः प्रत्येक समुदाय किसी न किसी प्राचीन ऋषि को ही अपना पूर्वज मानता है। इसी से समाज में विभिन्न समुदायों के भारद्वाज, वशिष्ठ, कात्यायन, उपमन्यु आदि गोत्र मिलते हैं। गोत्र का क्षेत्र इतना व्यापक कर दिया गया है कि सैकड़ों पीढ़ियों के अंतर पर जाने के पश्चात भी सगोत्र युवक युवतियां धर्मविहित विवाह नहीं कर सकते। प्रायः समस्त व्यवस्थाकारों ने सगोत्र विवाह का विरोध किया है। सप्रवर विवाह, प्रवर का अर्थ उन प्राचीन ऋषियों से होता है जो गोत्र संस्थापक ऋषियों के भी पूर्वज थे। व्यवस्थाकारों ने सप्रवर विवाह का भी विरोध किया है। अंतर जाति विवाह, सूत्रकाल में वर्ण व्यवस्था अत्यंत दृढ़ हो गई थी, अतः प्रायः प्रत्येक व्यवस्थाकार सवर्ण विवाह को ही अच्छा समझता है, परंतु फिर भी समाज में अंतरजाति विवाह होते रहे। ये अंतरजाति विवाह दो कोटियों में रखे गए हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। जब कोई पुरुष अपने से नीचे वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता था तो वह अनुलोम विवाह कहलाता था। जैसे ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय स्त्री का विवाह, इसके विरुद्ध जब कोई पुरुष अपने से ऊंचे वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता था तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाता था। जैसे क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण स्त्री का विवाह, सवर्ण विवाह को श्लाघ्य समझते हुए व्यवस्थाकारों ने अनुलोम विवाह की अनुमति दे दी थी। कदाचित समाज में होने वाले अल्पसंख्यक अनुलोम विवाह को वैध करने के लिए ही यह अनुमति दी गई थी, परंतु द्विजातियों के लिए शूद्रा स्त्री के साथ विवाह करने की किसी प्रकार भी अनुमति न थी। गौतम का आदेश है कि शूद्रा स्त्री के साथ विवाह करने वाला ब्राह्मण श्राद्ध में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। वशिष्ठ का मत है कि शूद्रा के साथ विवाह करने वाला द्विजाति स्वर्गाधिकार से वंचित हो जाता है। विष्णु धर्म सूत्र में द्विजाति पुरुष और शूद्रा स्त्री के विवाह की कटु आलोचना की गई है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में द्विजाति शूद्रा विवाह होते अवश्य थे, तभी इन आलोचनात्मक एवं निषेधात्मक नियमों की आवश्यकता पड़ी थी। यही नहीं, व्यवस्थाकारों ने इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान के सांपतिक अधिकार को भी स्वीकृति किया है, परंतु प्रत्येक व्यवस्थाकार प्रतिलोम विवाह का घोर विरोधी था। ये विवाह अधर्म समझे जाते थे। इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतानों को गौतम अवैध घोषित करते हैं। विष्णु भी प्रतिलोम विवाह एवं उनकी संतानों को आर्यों के लिए विग्रहित बताते हैं। विवाह के 8 प्रकार, सूत्र साहित्य में 8 प्रकार के विवाह उल्लेख मिलता है। ये किसी एक काल अथवा स्थान के विवाह न थे। अति प्राचीन काल के असभ्य तथा अर्धसभ्य वातावरण से लेकर अपने काल के सुसंस्कृत वातावरण तक जिन जिन विवाह प्रणालियों का समय समय पर प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ था, उन सबको सूत्रकारों ने अष्ट प्रणाली के अंतर्गत श्रृंखलाबद्ध कर दिया। यहाँ पर 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख कर देना आवश्यक है। पहला, ब्रह्म। इस प्रणाली के अंतर्गत कन्या के विवाह का उत्तरदायित्व उसके पिता अथवा अभिभावक के ऊपर होता था। वह कोई सुयोग्य वर ढूंढ कर विधि पूर्वक अपनी अलंकृता पुत्री उसे दे देता था। समस्त विवाहों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इस विवाह को ब्रह्म का नाम दिया गया। प्रारंभ में वैशाखा कन्याओं के विवाह के अवसर पर उनकी भी रुचि का ध्यान रखा जाता था, परंतु समाज में जैसे जैसे कन्या के विवाह की आयु कम होती गई, वैसे ही वैसे उसके पिता का उत्तरदायित्व बढ़ता गया। कालांतर में ब्रह्म विवाह ही समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ। दूसरा, देव। कभी कभी यज्ञ कराने वाले पुरोहित के गुणों से प्रभावित होकर यजमान उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। वर के देव कार्य में संलग्न होने के कारण ही इस विवाह को देव की संज्ञा मिली। कुछ व्यवस्थाकारों का मत था कि इस प्रकार के विवाह में कन्या को पुरोहित की दक्षिणा समझना चाहिए। इस प्रकार की व्याख्या के अनुसार देव विवाह क्रियात्मक लगने लगा और समाज के एक वर्ग ने उसका विरोध किया, परंतु कालांतर में जब वैदिक यज्ञ समाप्त हो गए तो इस प्रकार के विवाहों का स्वतः अंत हो गया। तीसरा, आर्ष। इस विवाह में पिता पुत्री दान के बदले में अपने भावी दामाद से एक गाय और एक बैल लेता था। गाय बैल का उपयोग याज्ञिक कर्मों में किया जाता था, इसी से इस विवाह का नाम आर्ष पड़ा। स्पष्ट है कि यह विवाह क्रय विक्रय पर आधारित था। कदाचित आर्ष विवाह प्राचीन काल के विवाह की एक क्रय विक्रयात्मक प्रणाली का कुछ विशुद्धीकृत रूप था। इसमें धन धान्य के स्थान पर एकमात्र गाय बैल का एक जोड़ा ही लिया जाता था, परंतु फिर भी इसमें सिद्धांत तो क्रय विक्रय का ही था। इसी से व्यवस्थाकारों ने इस विवाह प्रणाली का घोर विरोध किया। चौथा, प्रजापत्य। इसके अंतर्गत पितावर का मधुर पर्क आदि से स्वागत करता है और इन वचनों के साथ उसे कन्या दान करता है कि तुम दोनों जाकर साथ साथ धार्मिक क्रियाएं करो। वस्तुतः प्रजापत्य और ब्रह्म विवाह में कोई अंतर नहीं है, दोनों के नाम और स्वरूप समानार्थक हैं। इसी से आपस्तंभ और वशिष्ठ वराह विवाह का तो उल्लेख करते हैं, परंतु प्रजापत्य का नाम तक नहीं लेते। पांचवा, गंधर्व। आधुनिक भाषा में से प्रणय विवाह कह सकते हैं। प्राचीन विचारधारा के अनुसार गंधर्व विवाह गंधर्व जाति अपने अनुरागी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी, इसी से इस विवाह प्रणाली का नाम गंधर्व पड़ा। यह विवाह प्रणाली वर और वधु की वैश्विक अवस्था की अपेक्षा करती है। बौद्धायन ने इस विवाह को धर्म माना है, परंतु आपस्तंभ और वशिष्ठ इसे अधर्म मानते हैं। छठवां, आसुर। यह विवाह क्रय विक्रय पर आधारित है। इसमें कन्या के बदले में उसके पिता को धन धान्य मिलता है। इसी से मानव गृह सूत्र इसे सौल्क विवाह कहता है। प्राचीन काल में असीरिया निवासियों में यह विवाह खूब प्रचलित था, इसी से कदाचित इसका नाम आसुर पड़ा। क्रय विक्रय पर आधारित होने के कारण इस विवाह का भी विरोध किया गया। बौद्धायन का कथन है कि कन्या को बेचने वाला पिता घोर नरक में जाता है और कृत पत्नी धर्म विहिता नहीं होती है, वह एक दासी के समान होती है। सातवां, राक्षस। इस प्रणाली के अनुसार कन्या का अपहरण किया जाता था। कभी कभी अपहरण में कन्या का भी हाथ रहता था, परंतु कभी कभी यह अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध होता था। उस अवस्था में अपहरणकर्ता को कन्या के पिता अथवा संरक्षक से युद्ध करना पड़ता था। कालांतर में यह प्रणाली सूरकर्मा क्षत्रियों में अधिक प्रिय बन गई थी और इसका नाम छात्र विवाह भी पड़ गया था। सूत्रकारों ने इस विवाह का घोर विरोध किया और यह कहा कि बलात् अपहरण की कोई कन्या के साथ विवाह करना अधर्म है। उस कन्या को अविवाहित ही समझना चाहिए और उसका विवाह दूसरे व्यक्ति के साथ किया जा सकता था। आठवां, पैचास। इसके अंतर्गत सोती हुई बेहोश अथवा पागल कन्या के साथ समागम किया जाता था। समागमकर्ता के पचास कर्म के कारण ही विवाह प्रणाली का नाम पैचास पड़ा। यह सबसे अधिक निकृष्ट विवाह था। अपस्तम और वशिष्ठ ने तो इसे अधर्म विवाह की कोटि में भी नहीं रखा। जिन व्यवस्थाकारों ने इस प्रकार की गर्हित प्रणाली को अधर्म विवाह प्रणाली में स्थान दिया है, उन्होंने कन्या के हित को ध्यान में रखकर ही ऐसा किया है। उनकी अवस्था के अनुसार उस पापात्मा में बेचारी व्यक्ति को विवश होकर उस कन्या के साथ विवाह करना ही पड़ेगा। यदि उस पापात्मा के पाप कर्म के पश्चात व्यवस्थाकार इस प्रकार के विवाह को अवैध मानते हों तो एक निरी कन्या का जीवन नष्ट हो जाता है। इसी से उन्होंने इस निकृष्टम प्रणाली को भी अपनी विवाह प्रणाली में स्थान दे दिया। इस प्रकार उपयुक्त आठ विवाह प्रणालियों में ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति विवाह को प्राय धर्म माना गया है। गंधर्व विवाह को कुछ व्यवस्था का धर्म मानते हैं और कुछ अधर्म। शेष तीन विवाह असुर, राक्षस और पैचास अधर्म माने गए हैं। बौद्धायन में प्रथम चार धर्म विवाह को ही ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त माना गया है। इन चार विवाहों में भी ब्रह्म और प्रजापति विवाह को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मानव गृह सूत्र में सौल्व विवाह के अतिरिक्त केवल ब्रह्म विवाह का ही उल्लेख करता है। पीछे बताया जा चुका है कि वस्तुतः प्रजापत्य और ब्रह्म विवाह को एक ही विवाह समझना चाहिए। एक पत्नीकता, साधारणतः सूत्र काल में पुरुष एक पत्नी की थे। अपस्तंभ का कथन है कि प्रजावती धर्म पत्नी के होते हुए भी मनुष्य को दूसरा विवाह न करना चाहिए। जो व्यक्ति अकारण अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करता है वह पातकी होता है। अपनी पत्नी के अप्रजा, स्त्री प्रजा अथवा मृत प्रजा होने का बहाना करके भी मनुष्य सिर्ग दूसरा विवाह नहीं कर सकता। उस स्थिति में उसे कर्मशः 10 वर्ष, 12 वर्ष तक और 15 वर्ष प्रतीक्षा करने का आदेश दिया गया है। हाँ, अपरिवादनी व्यक्ति का सद्य त्याग करने की अनुमति दी गई है, परंतु पूर्वकालीन और उत्तरकालीन उदाहरणों को देखते हुए यह अनुमान होता है कि राजवंश और धनी वर्गों में मनुष्य बहुपत्नीक भी होते होंगे। उपयुक्त नियमों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि पुत्र प्राप्ति के हेतु सामान्य मनुष्य भी दूसरा विवाह कर लेते होंगे। सती प्रथा, सूत्र साहित्य जन्म से लेकर मरण तक मनुष्य के बहुसंख्यक संस्कारों का उल्लेख करता है, परंतु सती प्रथा के विषय में वह एक शब्द भी नहीं कहता है। यदि तत्कालीन समाज में सती प्रथा प्रचलित होती तो व्यवस्थाकार उसके विषय में नाना प्रकार के नियम बताए बिना न रहते। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि सती प्रथा अविद्यमान थी। यही नहीं, अपस्तंभ एक स्थान पर स्वयं कहते हैं कि मृतक पति के दाह संस्कार के पश्चात विधवा स्त्री को रेवर मृतक पति का शिष्य अथवा उसका कोई विश्वस्त वृद्ध दास शमशान से घर ले आता है। इस व्यवस्था में भी है विधवा के घर वापस आने का उल्लेख है, सती होने का नहीं। नियोग प्रथा, कुछ सूत्रकारों के मतानुसार विधवा स्त्री पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने देवर के साथ संबंध स्थापित कर सकती थी, परंतु गौतम की व्यवस्था में यह संबंध दो पुत्रों की प्राप्ति तक ही रहना चाहिए। यदि देवर न हो तो विधवा स्त्री सपिंड, सगोत्र, सपर्वत, सब जाति पुरुष के साथ भी नियोग स्थापित कर सकती थी। यही नहीं, पुत्र प्राप्ति के निमित्त सदवा स्त्री अपने पति के जीवन काल में भी पर पुरुष के साथ नियोग कर सकती थी। इस प्रकार के नियोग से उत्पन्न संतान को व्यवस्थाकारों ने क्षित्रज कहा है। बौद्धायन धर्मसूत्र से प्रकट होता है कि पति के मृतक, नपुंसक अथवा रोगी होने पर उसकी स्त्री नियोग प्रथा द्वारा क्षित्रज पुत्र प्राप्त कर सकती थी, परंतु यह नियोग दो पुत्रों की प्राप्ति तक ही रहता था। कभी कभी विधवा की संपत्ति हड़पने के लिए लोग उसके साथ नियोग स्थापित करने की चेष्टा करते होंगे। व्यवस्थाकारों ने इस लोभपूर्ण प्रवृत्ति का विरोध किया है, परंतु कुछ व्यवस्थाकारों ने नियोग प्रथा द्वारा प्राप्त पुत्रों को वैध एवं धर्म नहीं माना है। उदाहरणार्थ अपस्तंभ का कथन है कि नियोग द्वारा पुत्र प्राप्त करने वाली दंपति नरक में जाती है। क्षेत्रज पुरुष नियोगी का ही पुत्र होता है, वह स्त्री के वास्तविक पति के लिए कोई धार्मिक क्रिया नहीं कर सकता। स्त्री का पुनर्विवाह, सूत्र साहित्य कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। बौद्धायन एकमात्र अमुक्त विधवा को पुनर्विवाह की आज्ञा देते हैं। वशिष्ठ ने अभुक्त विधवा और पोषितापतिका स्त्रियों को पुनर्विवाह का अधिकार दिया है, परंतु दूसरी परिस्थिति में उसे 5 वर्ष तक अपने पति के वापस आने की प्रतीक्षा करना चाहिए। तत्पश्चात वह अपनी इच्छा अनुसार अपने किसी निकट संबंधी के साथ पुनर्विवाह कर सकती है। बौद्धायन और वशिष्ठ दोनों ने पुनर्भू स्त्री का वर्णन किया है। पुनर्भू उस स्त्री को कहते थे जो पुनर्विवाह करती थी, उसकी संतान को अनुभव कहा गया है। इन शब्दों में भी स्त्री के पुनर्विवाह की प्रथा सिद्ध होती है। संबंध विच्छेद, वशिष्ठ की व्यवस्था से सिद्ध होता है कि पति के प्रव्रजित होने पर स्त्री उससे अपना संबंध विच्छेद कर सकती थी। पुनः उन्होंने पुनर्भू स्त्री का अर्थ बताते हुए जो कुछ लिखा है उससे यह प्रकट होता है कि तत्कालीन समाज में पति के क्लीब, उन्मत्त अथवा पतित होने पर भी स्त्री संबंध विच्छेद कर सकती थी, परंतु साधारण परिस्थिति में पति पत्नी का संबंध अविच्छेद भेद समझा जाता था। संबंध विच्छेद का अधिकार होते हुए भी स्त्रियां उसका उपयोग न करती थीं। कम से कम भारतीय इतिहास में इसके उदाहरण नहीं के बराबर हैं। पर्दा सूत्र साहित्य में असंख्य विधि निषेधों के बीच कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिलता जिससे पर्दा प्रथा का अस्तित्व प्रकट होता हो। सूत्रकारों का कथन है कि विवाह के पश्चात अपने ग्राम को लौटते हुए वर अपनी नवविवाहित स्त्री को मार्ग ग्रामीणों को दिखाते हुए एक वैदिक श्लोक पढ़ता था। इस समय वधु के मुख पर किसी भी अवगुंठन का चिन्ह नहीं मिलता। समाज में नारी का पद सूत्र साहित्य में यत्र-तत्र नारी की पराधीनता के कतिपय उदाहरण अवश्य मिलते हैं। उदाहरणार्थ बौद्ध धर्म का मत है कि नारी पुरुष के अधीन है। यही मत वशिष्ठ का भी है। गौतम भी कहते हैं कि वह धार्मिक क्रियाएं करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, परंतु फिर भी नारी समाज की संपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि वह अत्यंत संतोषजनक थी। उसका विवाह वैश्विक अवस्था में होता था। वह उपनयन संस्कार ब्रह्मचर्याश्रम और वेदाध्ययन की अधिकारिणी थी। उसे पुनर्विवाह संबंध विच्छेद का भी अधिकार था। समाज में एक पत्नीकता की प्रथा ने भी उसकी स्थिति संतोषजनक बना दी थी। पर्दा प्रथा न होने के कारण वह धार्मिक एवं सार्वजनिक कार्यों में अपने पति का सहयोग भी दे सकती थी। माता के रूप में तो उसकी गरिमा सर्वमान्य थी। उसका पद पिता और आचार्य से भी ऊंचा समझा जाता था। समाज बहिष्कृता माता भी अपने पुत्र के लिए त्याज्य नहीं हो सकती। पतित होने पर पिता परित्याज्य हो सकता है, परंतु माता कदापि नहीं। आर्थिक अवस्था कृषि व पशुपालन। सूत्रकाल में कृषि प्रधान व्यवसाय था। सांख्यायन गृह सूत्र में बैलों द्वारा खेती करने, हल चलाने व मंत्रों के साथ समस्त कृषि संबंधी कार्य करने का उल्लेख मिलता है। जौ और चावल की कृषि प्रमुख रूप से होती थी। साथ ही पड़ती भूमि छोड़ रखने अथवा बंजर भूमि का भी प्रमाण प्राप्त होता है। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन का व्यवसाय होता था। इसके अतिरिक्त महिष, भेड़, बकरी, घोड़े व गधे भी पाले जाते थे, जो या तो भारवाहक सवारी तथा ऊन बनाने के कार्य में आते थे अथवा मरने के बाद उनका चर्म काम में लाया जाता था। जिसके पास जितने ही अधिक कृषि व पशु होते थे, उतने ही वे धनी समझे जाते थे। व्यापार व वाणिज्य मंत्रों द्वारा व्यापार में लाभ होने की आशा से किए गए पांडे सिद्धि संस्कार का उल्लेख प्राप्त है, जिससे सिद्ध होता है कि व्यापार तथा वाणिज्य होता था, परंतु यह व्यापार वैश्यों में अधिक होता था। यद्यपि समुद्र तथा सिंधु शब्दों का प्रयोग होता था, परंतु यह निश्चित है कि सूत्रकाल में सामुद्रिक ज्ञान बहुत कम था, इसलिए सामुद्रिक व्यापार होने में संदेह है। बंदरगाहों और केंद्रों का उल्लेख कहीं नहीं है। मनुष्यों का जीवन पार्जन व्यवसाय इत्यादि ग्रामों में था। यद्यपि छोटी छोटी नावों का उल्लेख है, परंतु समुद्र पोत होने में संदेह है। उद्योग धंधे कल कारखाने नहीं थे, घरेलू उद्योग धंधे होते थे। कुशासन व चटाई बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, सील, प्याले, भाले, काठ के सामान बनाने का कार्य बहुत होता था। रेशम के कीड़े पाले जाते थे, जिससे रेशम प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त सूती, ऊनी व लिलेन कपड़ों का प्रयोग उद्योग होता था। रंगाई, धुनाई, सिलाई इत्यादि भी होती थी। धातु के बर्तन, बर्छी, भाले, तीर तथा अन्य घरेलू सामान बनाने का व्यवसाय प्रचलित था। सूत्रकाल में तो स्वर्ण, चांदी, लोहे, तांबा, पीतल व अन्य धातुओं का प्रयोग बहुत आयत होता था, जिससे स्पष्ट है कि इन धातुओं का व्यवसाय काफी उन्नत था। ग्रामों आर्थिक दशा अच्छी थी। वर्णों में कार्य के विभाजन से समस्त व्यवसाय सुचारू रूप से चलते थे। लेन देन का कार्य भी वैश्यों में बहुत प्रचलित था। क्रय विक्रय पशुओं के रूप में होता था, अथवा नाज देकर भी अन्य आवश्यकता की वस्तुएं ली जा सकती थी। स्वर्ण मुद्राएं संभवतः थी, परंतु उनका प्रयोग कम होता था। राजनैतिक दशा सूत्रकाल में राजनैतिक दशा साधारण थी। गृह सूत्र में बड़े साम्राज्य होने का प्रमाण नहीं है, इसके विपरीत छोटे छोटे राज्यों के होने का प्रमाण प्राप्त है। यद्यपि कोई एक ऐसा सम्राट नहीं था जो समस्त राज्यों पर अनुशासन कर सकता था, परंतु यह अनुमान लगाना व्यर्थ है कि समस्त राज्यों में अराजकता व्याप्त थी। छोटे छोटे अपराधों में कठोर दंड और मृत्यु दंड तक दिया जाता था। ब्राह्मण वर्ण की नैतिक प्रधानता होने के कारण शेष तीन वर्गों में भी अराजकता की भावना कम थी। वशीकरण मंत्र, जो अपने पक्ष में न्याय करने व विपक्षी दल को पराजित करने या न्यायाधीश की मति फेर देने के लिए पढ़े जाते थे, इस सत्य के द्योतक है कि न्यायाधीश अथवा सरपंच होते थे। वकील व कोई स्पष्ट कानून नहीं थे और न न्याय करते समय कानूनी दृष्टि से मामले की समीक्षा होती थी। शिक्षा सूत्रकाल में किताबी शिक्षा न थी, वरन विद्यार्थी को कई वर्षों तक अपने आचार्य अथवा गुरु के संपर्क में रहकर विद्योपार्जन करना पड़ता था। इसे हम बहुत कुछ आधुनिक स्थानीय विश्वविद्यालय का रूप दे सकते हैं, बल्कि सूत्रकाल में आधुनिक विद्यालयों की अपेक्षा विद्याभ्यास पर जोर दिया जाता था। कारण शिष्य को निरंतर कई वर्षों तक गुरु के साथ रहना पड़ता था और उन पर गुरु का पूर्ण अनुशासन रहता था। शिक्षा के समय और शिक्षा काल में भी कई संस्कार होते थे। उपनयन संस्कार, शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्ण के विद्यार्थियों का सर्वप्रथम शिक्षा संबंधी संस्कार उपनयन संस्कार होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण के विद्यार्थियों के लिए उपनयन संस्कार की अवस्था व ऋतुएं भिन्न थी। ब्राह्मण पुत्र के लिए 8 से 10 वर्ष, क्षत्रिय पुत्र के लिए 11 वर्ष व वैश्य पुत्र के लिए 12 वर्ष उपयुक्त माने गए थे। यही नहीं, यदि ब्राह्मण संतान का 16वें वर्ष और क्षत्रिय पुत्र का 22वें वर्ष और वैश्य पुत्र का 24वें वर्ष तक उपनयन संस्कार न हो जाए तो वे पतित समझे जाते थे और उनकी मर्यादा नष्ट हुई समझी जाती थी और उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। उपनयन संस्कार की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन देना व्यर्थ है। आजकल जैसा संस्कार होता है उससे बहुत कुछ भिन्न होते हुए भी बाह्य रूप से बहुत कुछ वैसा ही है। शिष्य के सिर के बालों का मुंडन हो जाता था, वह एक वस्त्रधारी रहता है और हाथ में दंड धारण करता है। उस दंड की लकड़ी तीनों वर्णों में भिन्न होती है। उपनयन संस्कार के पश्चात आचार्य सूर्य को साक्षी मानकर शिष्य को अपनी सेवा में रख लेता है। यही दिवस शिष्य के शिक्षा काल का प्रारंभ माना जाता है। इस काल में शिष्य को नैतिक शिक्षा, संयम, चरित्र निर्माण पर अधिक बल डाला जाता था। शिक्षा का प्रारंभ होना एक नवीन आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ माना जाता था। शिक्षा काल में शिष्य को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना पड़ता था। लवण, मिर्च, खटाई और तरकारी का सेवन उपनयन के 3 दिन तक निषिद्ध माना जाता था। इन शिष्यों की दिनचर्या कठोर होती थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि निमित्त हो ये नैतिक कर्म में लग जाते थे। खान पान शयन इत्यादि में इन्हें बड़ी रोक थी। ये भूमि पर सोते थे, मिट्टी के घड़े से जल पीना, दिन में सोना, अधिक बात करना, जोर से बोलना, स्त्री की ओर देखना तो उपहास करना, असोच की दशा में रहना, बिना गुरु को प्रदान किए भोजन ग्रहण करना और शिक्षा के अतिरिक्त और कुछ भोज्य पदार्थ खाना, दंड के अतिरिक्त और कोई आयुध ग्रहण करना इत्यादि निषिद्ध था। गुरु इन शिष्यों को मौखिक शिक्षा देते थे जो इन्हें कंठस्थ करना पड़ता था। शेष समय गुरु की सेवा, आत्मचिंतन, संध्योपासना और वेद पाठ में जाता था। प्रत्येक प्रकार की शिक्षा, वेद पाठ तथा संध्योपासना निमित्त मंत्रों के साथ प्रारंभ और अंत होती थी। उपवास शिक्षा का एक अंग था और अतिरिक्त शिष्यों को नाना प्रकार के व्रत करने पड़ते थे। शास्त्रार्थ, वाद विवाद, चर्चा आदि शिक्षा के अंग थे। तर्पण तथा उपवास के साथ शिक्षा काल का अंत होता था। विद्यार्थी को शिक्षा काल में किए गए अपराध व नियम उल्लंघन के फलस्वरूप घोर प्रायश्चित करना पड़ता था। ये प्रायश्चित बड़े कठोर होते थे। अनाध्याय तथा अवकाश। शिक्षा काल में अवकाश अथवा छुट्टी का उल्लेख प्राप्त है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिवस अनाध्याय दिवस माना जाता था। उत्तरायण सूर्य के प्रथम दिवस के 1 दिन पहले व 1 दिन बाद तक अनाध्याय रहता था। इसके अतिरिक्त श्राद्ध, राजा के निधन, दुर्घटना, भूकंप, ग्रहण, गुरु तथा गुरु पत्नी के निधन, घोर वर्षा व बवंडर, किसी महापुरुष के आगमन इत्यादि आकस्मिक दुर्घटना के कारण अनाध्याय रहता था और वेद पाठ स्थगित कर दिया जाता था। शिक्षा समाप्ति पर समापवर्तन संस्कार होता था और शिष्य को दीक्षांत समारोह में भाग लेना होता था। विद्याध्यन के बाद इन शिष्यों को स्नातक कहते थे। सूत्रकाल में शिक्षा प्राप्त स्नातकों की 3 श्रेणियां थी। पहला विद्याव्रत स्नातक, जो वेद पाठ के साथ साथ वेद में वर्णित नियम व व्रत को पूरा करते थे। ऐसे स्नातक सबसे उच्च व आदर के पात्र समझे जाते थे। दूसरा विद्या स्नातक, जो केवल वेद कंठस्थ करने के उपरांत व्रतों का पालन नहीं करते थे। और तीसरा व्रत स्नातक, जो बिना वेद कंठस्थ किए हुए व्रतों का पालन करते थे। परंतु इन उपरोक्त 3 प्रकार के स्नातकों को कठोर परिश्रम, आचार विचार, संयम व व्रत का निरंतर अभ्यास करना पड़ता था। सूत्रकाल की शिक्षा में नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। शिक्षा काल के अंतर्गत एक ओर जब वेद पाठ, वाद विवाद तथा अन्य माध्यमों द्वारा स्नातक के बुद्धि का विकास होता था तो दूसरी ओर शरीर को निरोग रखने व स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम, योग तथा अन्य क्रियाओं का अभ्यास करना पड़ता था। यही कारण है कि उस युग के स्नातक निरंतर अभ्यास के कारण अधिक कर्मकांडी हो जाते थे। वेशभूषा, सूत्रकाल में पहनावा बहुत सादा था। मुख्यतः 2 वस्त्र पहने जाते थे। पहला अंतरी, जो कमर के नीचे पहना जाता था, और दूसरा उत्तरी, जो कमर के ऊपर पहना जाता था। विवाह में होने वाली रीतियों से स्पष्ट होता है कि स्त्रियों व स्नातकों का पहनावा एक सा था। उपरोक्त 2 वस्त्रों के साथ एक मेखला व दंड परिधान का अंग था। उत्तरी परिधान के अभाव में अंतरी वस्त्र से ही कटी के ऊपरी भाग को ढक लेना वृत्तांत प्राप्त है। ब्राह्मण का उत्तरी वस्त्र हिरण के, क्षत्रिय का रुरु नामक पशु के और वैश्य का बकरे के चर्म का बनता था। संस्कार अथवा उत्सव के अवसर पर पगड़ी के प्रयोग का विवरण प्राप्त है। विद्यार्थियों का उत्तरी वस्त्र कभी कभी लोग्र के फूल से अथवा नील से रंगा जाता था। काले वस्त्रों का भी उपयोग होता था। ऊनी, सूती व रेशमी वस्त्रों का उल्लेख प्राप्त है। कम्बल व ऊनी वस्त्र पिंडदान में दिए जाते थे। यद्यपि नए परिधान तो भी समझे जाते थे, परंतु वस्त्रों के धोने का वृत्तांत मिलता है। स्नातक तथा भ्रमण करने वाले वैश्य व यात्री गर्मी व धूप से रक्षा के लिए जूते व छाता का प्रयोग करते थे। पशुओं व शत्रुओं के आक्रमण से आत्मरक्षा के लिए यात्री डंडों का प्रयोग करते थे तथा यात्रा के समय इन्हें साथ रखते थे। खान पान सूत्र काल में मनुष्य जो भोजन करते थे उसे सात्विक नहीं कहा जा सकता, कारण मांस का खुल कर प्रयोग होता था। इस काल में हरिनाकशीन गृह सूत्र के अनुसार चावल, जौ, सेम के बीज व सरसों का प्रयोग होता था, जो भोजन के प्रमुख अंग माने जाते थे। जौ तथा चावल प्रमुख रूप से खाया जाता था। दूध, दही, घृत तथा मक्खन का प्रयोग होता था। हवन में आज्य प्रमुख अंग समझा जाता था। अन्न और दूध तथा दूध की सामग्री के अतिरिक्त शहद, नमक व मदिरा का भी प्रयोग उत्सव के समय या विशेष अवसरों पर किया जाता था। मांस व मदिरा निषेध नहीं था। ब्राह्मण भी इन वस्तुओं का सेवन खुलकर करते थे। गौ मांस भी खाया जाता था। यहाँ तक कि अतिथि के आने पर गाय का काटना उनकी सेवा व आतिथ्य का विशेष अंग समझा जाता था। श्राद्ध के समय तो मांस अनिवार्य था। हाँ, विद्यार्थियों के लिए मांस व मदिरा वर्जित था। इससे स्पष्ट होता है कि मांस व मदिरा का परित्याग उत्तम समझा जाता था। अन्य प्राशन संस्कार जो शिशु के जन्म से छठे मास किया जाता था में शिशु को मांस अनिवार्य रूप से खिलाया जाता था ताकि शिशु बोल सके। परिवार सूत्रकाल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, परंतु परिवार विच्छेद होने का भी प्रमाण प्राप्त है। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य गृह स्वामी की आज्ञा का पालन करते थे। बड़ों का सत्कार होता था। छोटे बड़े आयु के हिसाब से देखा जाता था। घर में जो सबसे अधिक आयु वाला विवाहित पुरुष होता था वह गृह स्वामी समझा जाता था। उसके निधन पर उसका बड़ा लड़का उसका स्थान लेता था। गृह स्वामी को बड़प्पन की मर्यादा निभानी पड़ती थी। भोजन के समय अतिथि का सत्कार सबसे पहले होता था, उसके बाद विद्यार्थी भिक्षु को उसका भाग दिया जाता था, फिर गर्भवती स्त्री को। छोटे व बड़े की मर्यादा का उल्लंघन सामाजिक दृष्टि से ही समझा जाता था। परिवार में पुरुष का स्थान स्त्री से ऊंचा समझा जाता था। बालक का जन्म कन्या की अपेक्षा अधिक सुख कर माना जाता था। यात्रा के बाद घर आए हुए परिवार के सदस्य बालक को उठाकर पहले प्यार करते थे, कन्या का उसके बाद। यह भेदभाव संभवतः उस काल की राजनीतिक व सामाजिक दशा के कारण था, क्योंकि परिवार में पुरुष का आगमन स्त्री की अपेक्षा अधिक उपयोगी व लाभदायक होता था।